मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 20 अप्रैल 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज शुक्रवार है और अपन ने जो लाइफ मैनेजमेंट के विषयों में विविधता लाने के तहत जो अलग अलग तरीके से इसे प्रस्तुत किए जाने के बारे में विचार किया है और आप सब ने उस पर अपनी सहमति भी व्यक्त की है, उसी के तहत जहां तक मुझे याद आ रहा है आज के दिन मुझे आपसे एक कविता के जरिए मुलाकात करनी चाहिए, चाहे वो कविता हो चाहे वो किसी विद्वान का कोई बहुत महत्वपूर्ण उद्धरण हो या शेरो शायरी की लाइन हो, कुछ इस तरह की जो थोड़ा सा हटकर हो और आपके अंदर एक अलग तरह की हलचल पैदा कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे हमारे जो इमोशंस कमजोर पड़ते जा रहे हैं, या कह लीजिए कि कमजोर नहीं भी पड़ रहे हैं तो इस रूप में कमजोर पड़ रहे हैं कि हमारी सहिष्णुता कम हो रही है, तो वह कमजोर पड़ना ही है। यानी कि हम जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो यही मान के चलिए कि इमोशंस कमजोर पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो हम ताकतवर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो कविता शायरी कहानियां उपन्यास या कला के जो दूसरे रूप हैं कहीं ना कहीं हमें मजबूत बनाने का काम करते हैं, क्योंकि कलाओं की एक बड़ी विशेषता है कि सिर्फ मनोरंजन हम नहीं करते। हमें लगता है कि ये तो केवल मन बहलाने की चीज है, नहीं मनोरंजन ही नहीं करते, हमारे अंदर की चीजों को वो व्यवस्थित करते हैं, जिंदगी का व्यापक रूप हमें दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि व्यापक रूप ही नहीं दिखाते बल्कि सच्चाई से अवगत भी कराते हैं। तो मैं कलाओं का तो जीवन में बहुत बड़ा रोल मानता हूं। सच पूछे तो जब अपनी जिंदगी का विश्लेषण करता हूं तो उसकी भूमिका को मैं साफ साफ देख पाता हूं कि कलाओं ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है, और डेफिनेटली आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। तो मित्रों थोड़ा ये सोच करके भी मैंने अब थोड़ी सी कविताओं और शेर व शायरी को शामिल करने का फैसला किया है और आप सबने इसे वेलकम भी किया है। तो आइए मैं आपके सामने अब एक छोटी सी कविता रख रहा हूं, शीर्षक मैं नहीं बताऊंगा, शीर्षक आप लोग खुद सोच लीजिएगा और मुझे पक्का मालूम है कि जो भी शीर्षक आप सोचेंगे वो निश्चित रूप से वो बिल्कुल सही होगा, इतना विश्वास मेरा आप सब पर है। ये जो कविता है फ्रेंड्स ये नरेश सक्सेना जी की है। नरेश सक्सेना अभी जो कवि हैं हिंदी के जो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं उनमें से मैं उन एक मानता हूं, और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि नरेश सक्सेना जी को मैंने आमने सामने सुना है, कई कई बार सुना है। और जब भी नरेश सक्सेना जी का अगर कहीं कविता पाठ हो रहा हो और मेरे लिए संभव है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से जाकर के उन्हें सुन सकूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहां पहुंच जाऊं। नरेश सक्सेना, और बताना चाहूंगा कि ये बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं लेकिन कविताएं क्या खूबसूरत लिखते हैं। ओह तो अब उस एक खूबसूरत कविता का एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश करता हूं। मित्रों देखिए बहुत सरल कविता है, एकदम से समझ में आ जाती है, बहुत ही सरल, नई कविता के पैटर्न पर है जिसमें आपको छंद विधान नहीं मिलेगा। वो लिखते हैं, वही जो घोड़ों की नसों में खून बनकर दौड़ती है, जो गाय के थनों से दूध बनकर फूटती है, वही जो घोड़ों की नसों में खून बनकर दौड़ती है, जो गाय के थनों से दूध बनकर फूटती है, वही जो बिछी रहती है धरती पर और कुचली जाती रहती है लगातार, वही जो बिछी रहती है धरती पर और कुचली जाती रहती है लगातार, कि अचानक एक दिन किले की दीवार और महल की मीनारों पर शान से खड़ी हो जाती है उन्हें ध्वस्त करने की शुरुआत करते हुए। मित्रों पता नहीं आपको ये कविता कितनी अपील की, मुझे बहुत अपील करती है और मुझे यकीन है कि आप सबको भी इस कविता ने अपील किया होगा। मैं एक बार पूरी कविता एक लय में पढ़ देता हूं। वही जो घोड़े की नसों में खून बनकर दौड़ती है, जो गाय के थनों से दूध बनकर फूटती है, वही जो बिछी रहती है धरती पर और कुचली जाती रहती है लगातार, कि अचानक एक दिन किले की दीवारों और महल की मीनारों पर शान से खड़ी हो जाती है उन्हें ध्वस्त करने की शुरुआत करते हुए। मित्रों, ये कविता है और इसमें जो वही है आप समझ गए होंगे, वह है घास, और इस कविता का शीर्षक भी है घास। अब आप देखिए कि कवि कहना क्या चाहता है। मित्रों, सच पूछिए तो घास के साथ हम पात शब्द जोड़कर इस्तेमाल करते हैं, घास पात, यानी कि ऐसा लगता है कि इस घास की कोई उपयोगिता नहीं है, केवल चरवाहे इसकी उपयोगिता को जानते हैं, क्योंकि उनके व्यवसाय का जो मूल केंद्र है पशु, उनका जो जीवन का केंद्र है वो है घास। अदरवाइज आप देखिए कि घास हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अगर गमलों में घास उगाई है तो हम उखाड़ के फेंकते हैं, फसल के साथ उगाई है तो हम उसे घास पतवार मानते हुए नष्ट कर देते हैं, घास को कुचलते हुए चलते हैं, घास का उगना अच्छा नहीं लगता है। यह घास जिसकी कोई उपयोगिता हम नहीं समझते हैं। सामान्यतया जो वनस्पति, अगर आप पूरे जगत को ले ले तो घास उसमें से बहुत ही कमजोर और बहुत ही निचली श्रेणी की वनस्पति है। काई वगैरह को छोड़ दें, उससे भी नीचे आती है, नहीं तो घास सबसे निचली श्रेणी में आएगी। लंबाई ज्यादा पकड़ नहीं पाती है, जो हम यहां देखते हैं। आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और वहां चले जाएंगे तो वहां तो बड़ी ऊंची ऊंची घास होती है। आप असम के जंगलों में चले जाएं तो बड़ी ऊंची ऊंची घासें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं यहां छोटी घास की बात कर रहा हूं जो हम सब रोजाना देखते हैं, इनके संपर्क में आते हैं। यानी कुल मिलाकर यह कि घास की कोई अहमियत नहीं है, न तो वनस्पति जगत में और न हमारे निगाहों में। कोई इसकी, सच पूछे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मेडिसिनल वैल्यू भी होती हो, यानी कि ऐसा लगता है कि ये बेकार की चीज है, राइट? लेकिन वो कह क्या रहे हैं कि ये बेकार की चीज भी देखिए कि क्या क्या कर रही है, क्या क्या कमाल कर रही है। वो घोड़े की नसों में खून बनकर दौड़ रही है, मतलब जो घोड़े में जो खून है, जो उसकी ताकत का केंद्र है, वहां घास है। और जिस दूध को हम पी रहे हैं, गाय के थनों में ये दूध बन रही है। और इसके बाद देखिए कि आगे जाकर के वो क्या कहते हैं, चलिए, लॉन पर बिछी रहती है, हमारे पैरों को गुदगुदी पहुंचाती है, हमारे पैरों को सहलाती है, उस पर चलना बेहतर लगता है, उस पर ठहरी हुई वो उसकी बूंदों को देखिए तो ऐसा लगता है कि क्या अद्भुत चित्रकारी और कलाकारी है इस प्रकृति की, कितनी खूबसूरती के साथ वो बूंदें उस घास के कोने में, किनारे में चुपचाप बिना किसी हरकत के बैठी हुई है। कभी निहार करके देखिए तो उसकी खूबसूरती से आप मुग्ध हो जाएंगे, उसके ध्यान से आप मुग्ध हो जाएंगे कि वो बूंद ऐसा लगता है जैसे कि मेडिटेशन की मुद्रा में है। और यही घास जो इतनी विनम्र है, इतनी बेकार सी लग रही है, जो जमीन पर पड़ी हुई है, क्या करती है कि अगर महलों पर उगाए, मीनारों में उगाए, उसे भी ध्वस्त कर सकती है। यानी कि उसकी जो कमजोरी है, यहां वो ताकत भी अपना दिखा सकती है। अब आप देखिए कि दोनों तीनों चीजें हैं, लेकिन यहां उन्होंने जो बात कही है मित्रों कि दीवारों और महल की मीनारों पर शान से खड़ी होकर, यानी कि जिसे हम कमजोर मान रहे हैं, अब कमजोर किस रूप में मान रहे हैं, तुलना के रूप में मान रहे हैं। जब हम उसकी तुलना किसी लता से करेंगे, जब हम उसकी तुलना किसी वृक्ष से करेंगे, तो बट नेचुरली कि उनकी तुलना में तो घास की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। उसकी तो ऊंचाई भी कम है, ताकतवर भी नहीं है, गिर भी जाती है, कोमल भी ज्यादा है, तो कोई अहमियत नहीं। लेकिन जब वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला करके, देखिए कवि कह रहा है कि शान से खड़ी हो जाती है, शान से खड़ी हो जाती है, आत्मविश्वास अपने अंदर ला करके, और जब वो तुल जाती है कि नहीं अब मुझे कुछ करना है, तो यही घास जो जमीन पर बिछी रहती है, जो हमारे पैरों के द्वारा कुचली जाती है, बस केवल एक फैसला करती है, अपने अंदर स्वाभिमान और शक्ति का भाव पैदा करती है, और फिर उस जगह को बदल करके वो दीवारों पर उगने लगती है, महलों की मीनारों पर उगने लगती है, वहां से निकलने लगती है, और धीरे धीरे देखते देखते वो जो मीनारे हैं और जो वो दीवारें हैं वो कमजोर पड़कर खत्म हो जाती है, यानी कि उसके ध्वस्त होने की शुरुआत हो जाती है। ये उस कमजोर घास की ताकत है। कुल मिलाकर के जो कवि कहना चाह रहा है मित्रों कि कोई भी कमजोर नहीं होता, पहली बात, कोई भी कमजोर नहीं होता, बस आपको अपनी थोड़ी सी अहमियत को पहचानना होता है। और जब अहमियत की हम बात कर रहे हैं तो ये घमंड की बात नहीं है, ये गलतफहमियों की भी बात नहीं है, ये केवल अपने सही स्वरूप को पहचानने की बात है, और ये जानने की बात है कि मैं क्या 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 कर सकता हूं, और जब मैं फैसला कर लेता हूं कि नहीं नहीं मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, नॉट एट ऑल, मैं ये कर सकता हूं। क्योंकि घास अगर सोच ले कि नहीं मैं बांस की तरह लंबा होना चाहती हूं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर घास सोच ले कि मैं बरगद की तरह छाया देना चाहती हूं तो मुश्किल हो जाएगा। उसको अपने सही स्वरूप को पहचानना होगा, और जब हम अपने सही स्वरूप को पहचान लेते हैं तो फिर दूसरी जो जरूरत होती है वो शान से खड़े होने की। अपने अंदर हम ताकत पैदा करते हैं, अपने स्वाभिमान को जागृत करते हैं, और इसके बाद फिर हम सही जगह पर अपनी जगह बनाकर कुछ भी हासिल कर लेते हैं। मित्रों, तो थोड़ा सा इस एंगल से आप सब इस कविता को समझने की और विश्लेषण करने की कोशिश कीजिए, तो देखिए कि और भी इसके आप बहुत बहुत से अर्थ निकालते चले जाएंगे। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आज शुक्रवार है, दो दिनों के बाद आप लोग सबसे फिर मुलाकात होगी और फिर नए नए विषयों पर बात होगी। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और मुझे इजाजत भी दें। नमस्कार।